ओम शांति। तो हम सब का आलीशान ख्यालात कौन सा है? आय का स्लोगन था ना, आलीशान ख्यालात। तो सबसे ज्यादा आलीशान ख्यालात कौन सा है हमारा? लक्ष्मी नारायण बनना, दोनों ही एट ए टाइम दोनों बन। अभी गीत था ना, बाबा तुम सा जैसा बन, तुम जैसा बनना है। ये हम सबका सबसे आलीशान ख्यालात है, बाबा जैसा बनना है। सबका यही संकल्प है ना, और सभी प्रयासरत भी हैं, अपने अपने तरीके से पुरुषार्थ भी करते रहते हैं और परिवर्तन भी महसूस करते हैं, प्रगति भी होती है और धीरे धीरे अपने जीवन से दूसरों का परिवर्तन करने के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं। तो हम सबका ये सबसे ऊंचा संकल्प है, सर्वोच्च संकल्प है, आलीशान ख्यालात। बाबा कहते ना, आलीशान आलीशान ख्यालात करो तो क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट होता है जब हमारा संकल्पों का अभाव होता है, कमी होती है, शुद्ध संकल्पों की कमी, पवित्र संकल्पों की कमी, शक्तिशाली संकल्पों की कमी, तो हमारा मन विचलित होता है या फिर खाली खाली रहेगा, उदास रहेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही नहीं है तो चलेगी कैसे। चलती का नाम गाड़ी है, खड़ी का नाम गाड़ी नहीं होता है। तो अगर हमारा मन चलता रहता है, अच्छे अच्छे संकल्पों में रमण करता रहता है, तो हमें अपने जीवन की वैल्यू का पता चलता है, सम्मान अंदर से जागृत होता है, अंदर जो शक्तियाँ हमने एकत्रित करके रखी हैं वो महसूस होती हैं। पुरुषार्थ का पैमाना कैसा है हमारा, किस अनुपात से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी स्वयं हम महसूस करते हैं। अगर शुद्ध संकल्प हमारे पास में है तो, अगर संकल्प ही नहीं है या फिर व्यर्थ संकल्प हैं या साधारण संकल्प हैं, तो भी जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया इतना तेज़ी से नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते हैं, हमेशा आलीशान ख्यालात की रचना करो। जितने संकल्प हमारे पवित्र हैं, शुद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, बलशाली हैं, तो हमारा पुरुषार्थ जो वो स्वतः होता रहेगा, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो संस्कार एक बार बन जाते हैं, वो संस्कार स्वतः काम करते हैं। जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं किस लिए, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। और ये सबसे अंतिम पुरुषार्थ भी यही है वास्तव में। और अंतिम माया भी दाव कैसे लगाएगी, हमारे अपने संस्कारों के रूप में माया हमारे सामने आएगी। दूसरे जो पेपर होते हैं उनका तो किसी ना किसी प्रकार के सामना करने का सामर्थ्य हमारे में होता है, कोई हम तरीका ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब हमारे अपने ही संस्कार हमको तंग करते हैं, तो वहाँ भागने का कोई मार्जिन ही नहीं है। इसलिए अपने संस्कारों को नवीनतम परिवर्तन करने के लिए या उच्च कोटि के बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, और वो संस्कारों को परिवर्तन करने का आधार है संकल्प शक्ति। हर ब्राह्मण आत्मा का संकल्प बहुत बड़ा एक शक्तिशाली शस्त्र है। वो अगर हमारा व्यर्थ संकल्प है स्वयं प्रति या दूसरों प्रति, तो जैसे हम स्वयं को भी श्रापित कर रहे हैं और दूसरों को भी श्रापित कर रहे हैं, या प्रकृति के प्रति, तो प्रकृति को श्रापित कर रहे हैं। इसलिए हर समय हमारा जो संकल्प है वरदानी संकल्प होना चाहिए, वरदानी थॉट, जिसमें बाबा कहते ब्लेसिंग भरी हो। मुरली में था ना दुआएं। दुआएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कहाँ से होती हैं? एक तो है दूसरों की सेवा करते हैं, वो बहुत सारी बातें, उसका आधार बीज क्या है, हम स्वयं, हमारे स्वयं के संकल्प ही। जिन संकल्पों के सामर्थ्य अनुसार हम सेवा करते हैं, उतना फोर्सफुली दुआएं हमारे खाते में जमा होती हैं। साधारण रूप से हम सेवा करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, तो दुआएं भी कम अनुभव होती हैं। इसलिए संकल्पों पर, संकल्प जैसे हमारा क्या है, बीज है बाबा कहते। अगर बीज ही शक्तिशाली है तो बाकी सारा विस्तार फल भी, वृक्ष भी शक्तिशाली होगा और फल भी अच्छे लगेंगे। लेकिन उस संकल्प रूपी बीज की फिर पालना भी करनी पड़ती है। भले कोई भी हम संकल्प रचते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव संकल्प रचते हैं तो भी उसकी पालना करनी पड़ती है, तो भी उसके बारे में सोचते रहते हैं ये संकल्प मुझे क्यों आया, ये मुझे आना नहीं चाहिए, पता नहीं मैं इससे कब मुक्त होऊंगा, इसके क्या क्या कारण है, ये भी हम जैसे संकल्प को पानी दे रहे हैं, उसको जैसे शक्तिशाली बना रहे हैं। तो सारा दिन हमारा जो मन है, थॉट सिस्टम है, कौन से संकल्पों में विचरण करता रहता है, ये हमें स्वयं ही निरीक्षण करने की बात है। तो ये ब्राह्मण जीवन जो बहुत अमूल्य जीवन है, कितना अमूल्य है, कितना अमूल्य है, हीरे जैसा, हीरे से भी बहुत आगे। तो इस जीवन को हमको ऐसे नहीं गंवाना है, बड़ा कीमती जीवन है ये। और जब हमको इसकी महसूसता होती है एक बार, तो सचमुच लगता है देवताओं से भी उत्तम है। एक है कि हम मुख से कह देते हैं नॉलेज के आधार से, लेकिन एक है कि महसूसता होती है कि सचमुच जब हम परमात्म प्यार का अनुभव करते हैं, वो जो अतीन्द्रिय सुख है, वो जो निराकारी अवस्था की अनुभूति होती है, उसका सुख संसार के सब सुखों से बहुत ऊपर है। वो इस संसार के सुख उसके आगे कुछ नहीं है, तुच्छ है एकदम। अगर उसका हमने अनुभव कर लिया तो संसार की दौलत हमारे कदमों में आ जाए तो उसको ठोकर मार देंगे। अगर हमारा आकर्षण है संसार के साधनों में, व्यक्तियों में, या फिर और बहुत सारी बातों में, तो हमारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हम कम कर रहे हैं, पुरुषार्थ के प्रति हमारा प्रेम उतना नहीं है। तो बाबा हमको अलग अलग विधियाँ बताते रहते हैं कि बच्चे कैसे इस ब्राह्मण जीवन को सफल करना है। तो आज की मुरली पर डिस्कस करेंगे, कौन से मुरली थी, 27 साल पहले सर्दियों के दिन 19 जनवरी, और 18 जनवरी को क्या हुआ था, ज्ञान सरोवर का, पिछले 18 जनवरी का ज्ञान सरोवर का उद्घाटन था। तो उसमें भी बाबा ने बहुत सारी सेवाओं को विस्तार करने की युक्तियाँ बताई, त्याग के बारे में अनेक गुण थे, स्नेह, सहयोग, धैर्यता, बहुत सारे गुण थे उसमें। तो आज की मुरली जो है, कौन सी मुरली है आज की, 19 जनवरी 1995। तो क्या है मुरली का आज का हेडिंग, क्या हेडिंग है, ब्रह्मा बाप के कदम कदम पर, कदम पर कदम रखो, रखकर सर्वंश त्यागी, आज्ञाकारी सर्वंश त्यागी बनो। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो भी हमको आज्ञाएं मिलती हैं, श्रीमत है, इसको हमको सिर माथे लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भाग्य का निर्माण करती है। और किसकी आज्ञा है, स्वयं भगवान की आज्ञा है, स्वयं सतगुरु की आज्ञा है, उसका जैसे फरमान है, उसके आगे कुछ नहीं है, फतवा जारी किया जैसे उसने, क्योंकि इसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। तो कौन कौन सी आज्ञाएं की आज की मुरली में, कौन कौन सी आज्ञाएं, हाँ जी, ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्माचारी बनो, आचरण और उच्चारण बाप समान हो, और कौन कौन सी आज्ञा है, बाप को साथ रखो, जज बनो वकील मत बनो। हाँ, तो अपनी ना एक लिस्ट निकालनी चाहिए, केवल मुरली तक तो थोड़ा सा सीमित रहता है, लेकिन अपनी बुद्धि को विशाल बनाने के लिए इसकी एक लिस्ट होनी चाहिए, है ना, आज्ञाएं कौन कौन सी है, क्योंकि दूसरे के चिंतन पर आधारित जो है ना, वो परमानेंट नहीं चलता ज्ञान, भले हम जितने मजे क्लासेस सुन ले, सभी अनुभूति करते होंगे इसकी, थोड़ा सा हमको प्रोग्रेस अनुभूति होती है, जिस समय तक हम उस हॉल में बैठे होते हैं, उस वातावरण के अंदर होते हैं, तब तक तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहती है, और अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं कि आज से हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और जैसे दरवाज़ा थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है उमंग सा प्रेशर, थोड़ा सा चार कदम और जाते हैं तो कोई दोस्त मिल जाता है, फिर वो कुछ बोलने लगता है, तो ये बातें धीरे धीरे और कम भूल जाती हैं, कमरे तक जाते जाते सारा ओम शांति हो जाता है। आज बाबा ने मुरली में कहा ना कि कम हो जाता है, फिर बाहर गए तो और कम, विदेशियों से बात मुलाकात की। तो हमको चिंतनशील बनना है, हमारे संस्कार सकारात्मक चिंतन के स्वतः जागृत हो जाने चाहिए, क्योंकि बिना चिंतन के जो हमारे पास्ट की चिंताएं हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। परसों के मुरली में था ना, बाप तुम्हें जमघटों की पीड़ा से, दुख से मुक्त छुड़ाने के लिए आए हैं, इसलिए तुम बाप और वर्ष्य को याद करो। तो जमघट कौन है? हमारे संकल्प ही जमघट हैं, हमारे संकल्प ही यमदूत हैं। कौन से संकल्प? व्यर्थ संकल्प, बाहर से थोड़ा नहीं आएगा। तो एक एक संकल्प को हमको देखना है, बड़ा सूक्ष्म से स्वयं की जांच करने की, निरीक्षण करने की जरूरत है। तो बाबा ने दो प्रकार के साथी बच्चों को देखा, साथ साथ में उस ज्ञान को हमें अपने साथ लाना है, अपने साथ लगाना है, उसको महसूस करना है कि वो सेवा या जो बाबा ने मुरली में कहा उसमें मैं कहाँ पर हूँ। अगर उसमें दूरी है तो उस दूरी को कैसे पूरा करना है। तो दो प्रकार के बाबा ने सेवा के साथी देखे, कौन कौन से? एक हैं स्नेही और स्नेह के साथ संबंध निभाने वाले हैं, है ना। दूसरे हैं स्नेह और संबंध के साथ सेवा करने वाले हैं। तो हम दोनों में से कौन है? दोनों ही हैं, कभी वो बन जाते हैं कभी वो बन जाते हैं। तो स्नेह और संबंध ये तो हम ठीक है करते हैं, लेकिन सेवा में भी वो स्नेह झलकता रहे, सेवा में भी बाबा के साथ हमारा संबंध जुड़ा रहे। जो बाबा कहते हैं कर्म करते कर्ण करावन हार की स्मृति, निमित्त भाव, कराने वाला करा रहा है, हम कर रहे हैं, निमित्त हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, कठपुतली हैं। उस दिन बाबा ने कहा ना, तो तीन पी बताया था, कौन कौन से? प्योरिटी, पीस, प्रायोरिटी, नहीं, तीन, दो जानवर थे, पंछी, पंछी, हाँ, कौन से पैरेट हो? हाँ, ह्यूमन पैरेट और ह्यूमन कबूतर। तीसरा कौन सा बताया था? पपेट, पपेट बताया था उसमें, था पिजन और तो कबूतर तो था ही, लेकिन पपेट शायद नहीं था, वो दूसरे किसी और मूल्य में था, दो ही थे। एक इस पर चिंतन कर सकते हैं कि बाबा कौन कौन से जानवरों को याद करते हैं। हमने एक बंदर हमने एक बार लिस्ट बनाई थी, उन जानवरों को देखने से भी कितना ज्ञान झलकता है, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बंदर को देखते सारा याद आ जाए कि बाबा बंदर के बारे में क्या कहते हैं, है कि तुम पहले बंदर बुद्धि थे, हाँ, उसका सकारात्मक चिंतन, तुम पहले मंदिर लायक थे, पूजने थे। और कोई भी जानवर याद आए तो उसके साथ, सांप के बारे में बाबा क्या कहते हैं, जैसे वो खाल को छोड़ देता है ऐसे तुम्हें अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अच्छा, शेर के बारे में क्या कहते हैं? माया पेपर टाइगर है, और शेर पर शक्तियों की सवारी है, और शक्ति शेर पर बैठी है, आगे कॉकरेज दिख जाए तो, हाँ जी, ड्रामा जू मिसल चलता है, हाँ, माया बिल्ली पंजा मारती है, चूहा फूंक मार तो कितनी अकेले चूहे में भी, गाय क्या करती है? जुगाली करती है, और कौन कौन से जानवरों के? ब्रह्मड़ी, बिच्छू, और तो देखो एक क्लास तो ऐसे तैयार हो जाएगी। आप योग में बैठे बैठे अगर जानवरों को याद करेंगे ना तो भी शक्तिशाली बन जाएंगे कि बाबा उनके बारे में क्या कहते। अच्छा अच्छा ये अपने ज्ञान के हिसाब से ही। अच्छा, लाइब्रेरी में वो किताब मिलती है, तो जो भी हमको जानवर दिखे या कुछ भी दिखे उसको हमको ज्ञान के साथ जोड़ना है। कौन सा जानवर? अच्छा, उसको समझने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, कछुआ। हाँ, तो दो प्रकार के सेवा बाबा के साथी देखे, तो हमको देखना है कि हम स्नेह और संबंध निभा रहे हैं कि स्नेह संबंध के साथ सेवा भी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वायदा किया बच्चों ने, बच्चे तो वायदा करते हैं, लेकिन परमात्मा का वायदा कौन सा है? कौन सा वायदा किया बाबा ने जो टाले नहीं टल सकता? साथ निभाने का। बच्चे भले साथ हाथ छोड़ने की फिराक में रहते हैं, लेकिन बाप बच्चों को नहीं छोड़ता है, ढूंढ के भी ले आएगा। जैसे बच्चा अगर घर से भाग जाए तो माँ बाप कैसे ढूंढते हैं? जब तक मिले नहीं तब तक चैन नहीं आता उनको, पेपर में इश्तिहार देते हैं, ढूंढते हैं कहाँ कैसा भी मौसम हो, कितना भाग दौड़ करेंगे, कितना टेंशन रहती है उसमें। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं, अगर गुम हो जाते हैं तो बाबा को ढूंढना पड़ता होगा, टेंशन तो नहीं होती उसको, उसको पता वापस इधर ही आएगा, लेकिन बाबा का टाइम तो जाता होगा ना अगर ख्याल आ चले। बाबा ने कहा है अगर हम अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बड़ों का भी टाइम लेते हैं तो ये भी एक पाप चढ़ जाता है, बोझ चढ़ जाता है, क्योंकि हर बात की बाबा ने हम सबको समझ दी है, तो उस समझ के अनुसार अगर हम अपने जीवन को नहीं चलाते हैं और टाइम ले रहे हैं बड़ों का, तो ये सूक्ष्म बोझ है, फिर हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो वायदा परमात्म वायदा है, ये टाले टल नहीं सकता, भावी टाले टले नहीं। तो बाबा हमको हमेशा हर साथ हमारे अंग संग रहता है, हमारा साथ निभाने के लिए है, वो कौन सा है, दिल आराम। बाबा कहते दिल से अपने साथ रखो। एग्जाम्पल दिया ना, भले हम मधुबन में बैठे हैं लेकिन आ रही है घर की याद, तो यहाँ रहते हुए जैसे कोई फायदा नहीं है। और जो बाहर रहते हैं और मधुबन में दिल लगा हुआ, तो वो जैसे साथ में, जैसे बाबा के साथ दिल लगा हुआ है। तो ये स्थान मायने नहीं रखता, हाँ स्थान भी मायने रखता है, लेकिन बड़ी उससे ज़्यादा मायने रखता है हमारे मन के संकल्प, हमारी मन की स्थिति मायने रखती है कि कितना समय तक हम अपने मन को बिजी रखते हैं, कौन से ख्यालातों में, आलीशान ख्यालातों में। कितना सुंदर सेंटेंस है बाबा ने आज स्लोगन दिया, आलीशान ख्यालातों में रहो तो कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ज्ञान तो बाबा का वही है, लेकिन अलग अलग शब्दों से बाबा रोचक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो हमको नया ज्ञान लगता है, नई चीज़ लगती है। सब्जी तो वो आलू की है, लेकिन वो नए तरीके से बाबा बताते रहते हैं। हाँ जी, वैरायटी है, वैरायटी है, नया नया ज्ञान है। तो बाबा का वायदा है कि बच्चे हर समय मैं साथ में हूँ तुम्हारे। और बाबा ने एग्जांपल दिया ना, भले बाबा विदेश में जाते हैं तो क्या इंडिया वालों को अनुभव नहीं होता है? और हम सभी कौन सी पैदाइश हैं, अव्यक्त पैदाइश है ना, है कोई जिसने साकार में बाबा को देखा है? देखा, ये पीछे फोटो में दिख रहा है। तो प्रैक्टिकल में हम सब ने अनुभव किया हुआ है ना। अच्छा, ज्ञान में आने के समय किसने किसने बाबा को देखा या अनुभव कराया हो? रहने दो माता जी, रहने दो, बैठने दो, बैठने दे दो, कोई बात नहीं, जहाँ जगह मिलती बैठने दो। तो किसने किसने अनुभव किया है साकार, साकार का अनुभव? हाँ, तो रोज करते हाँ। तो एक बार हम क्या हुआ, अभी ज्ञान में चले ही नहीं थे हम, हमारा बड़ा भाई ज्ञान में चला, तो हम तो कोई सर्विस करते थे, तो हमारे पास एक सवेरे सवेरे बुजुर्ग आया उस सर्विस से संबंधित बात करने के लिए। तो जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ब्रह्मा बाबा की तस्वीर लगी थी, क्योंकि बड़ा भाई नया नया ज्ञान में चला था, हमको तो इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अट्रैक्शन थी। तो जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो बाबा की तस्वीर दिखाई थी, तो बोला ये आपके पिताजी? तो हमने बोला हाँ जी। बोला क्या बात है, क्या पर्सनैलिटी है इनकी, दो तो ऐसी पर्सनैलिटी बाबा की पिक्चर से उनको दिखाया, वो देखता ही रह गया, हालांकि वो तो ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, लेकिन देखता ही रह गया। तो हम भी तो उसी कुल के हैं ना, हमें देखते ही बाबा ने क्या बोला, देखते ही सामने खुश हो जाए कोई, अपने दुख दर्द ही भूल जाए। तो हम भी वैसी पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करनी है, रूहानियत वाली पर्सनैलिटी, अच्छे ख्यालातों वाली पर्सनैलिटी। तो बाबा हमेशा हमारे अंग संग है। पहले भी हमने एक बार अनुभव सुनाया था, एक बार यहाँ एक भाई आए थे दिल्ली से, तो उनकी सास और उनकी मिसिज, सास तो पक्की ज्ञान में थी, मिसिज थोड़ा कम, और जो जमात था वो तो नहीं चलता था, वो एंटी था एकदम। तो यहाँ भेजा किसी ने, तो हमको फ़ोन किया कि इनके थोड़ा देख रेख करना। तो यहाँ जैसे पहुँचे तो जो दमाद था बोला हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमको इस पर कोई भरोसा नहीं है, जादू वादू लग जाएगा। तो हमने बोला ऐसी बात नहीं है, बोला नहीं हम होटल में चले जाएंगे, और बहुत महंगी गाड़ी लेके आया, BMW बहुत महंगी होती है। तो फिर हमने बोला कोई बात नहीं, आप कम से कम जहाँ आपकी सास और मिसिज रहेंगे कमरा तो देख लो ठीक ठाक है या नहीं, तो उनको छोड़ने गए सुखदाम में। तो वहाँ रहे तो थोड़ा कमरे को देख के मन बदल गया उसका थोड़ा सा, बोला शाम के टाइम चला जाऊँगा होटल में, अभी मैं इधर ही रहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। तो उसकी जो मिसिज और सास तो भोजन करने के लिए आए, लेकिन वो नहीं आया भोजन करने के लिए, बोला भोजन का असर हो जाएगा, मैं नहीं करूँगा भोजन। तो खैर जी नहीं आया। फिर शाम के टाइम में वो गाड़ी लेकर पीस पार्क में चले गए। जब वापस आए तो जैसे पीस पार्क से बाहर निकले तो उनकी जो गाड़ी का बाहर का शीशा होता ना, वो कोई तोड़ के चला गया था। तो उसका मन बड़ा खट्टा हो गया, क्योंकि महंगी गाड़ी है। फिर शाम को वापस आया तो बिना भोजन किए वहाँ कमरे में चला गया। फिर हम यहाँ से तो ठंडा भोजन, सामान्य भोजन ही लेके गए, कड़ी थी, दाल थी, जो भी ठंडी रोटी जैसी थी वैसे लेके गया मैं भी। तो वहाँ जाके उसने थोड़ा सा खाया, फिर बोला, ये बाबा की तस्वीर क्यों लगाई है इधर? ये तो शरीर छोड़ दिया तो भूत है, इसको क्यों रखा हुआ इधर? क्योंकि सारे अपने अपने ख्याल होते ना, हमको तो कोई महसूस नहीं हुआ। तो हमने अपने सामर्थ्य अनुसार उनको समझाया, भाई ऐसे नहीं है, अव्यक्त हुए हैं ब्रह्मा बाबा और ये इधर ही हैं अभी भी। जब तक यज्ञ की सेवा पूरी नहीं होती तब तक ये यहीं सेवा पर उपस्थित हैं। तो बोला, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। बोला, मैं बहुत सारी संस्थाओं में गया हूँ जहाँ का भोजन करता हूँ ना असर हो जाता है, यहाँ का तो बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी उसने थोड़ा बहुत किया। फिर जब सवेरे उठ के आया, बोला, भोजन का तो असर हो गया मुझे। तो मैं बोला, क्या हुआ? बोला, रात को ये बाबा ऊपर से ना आया, ऊपर आसमान से बड़ा रथ था एक, और 5 घोड़े का रथ, और ऊपर से आया और मुझे उसमें बिठाया और मुझे ऊपर ले गया। और ऊपर ना एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है और एक माता जी बैठी है खुले बालों वाली, वो भी बैठी है और बहुत सारे सफ़ेद कपड़ों वाले भाई बहने बैठ रहे हैं और आहुतियाँ डाल रहे यज्ञ में। तो बोला, थोड़ा सा दृश्य बाबा ने दिखाया और मुझे वापस यहाँ छोड़ के चला गया। बोला, ये तो सारा भोजन का असर है। तो हमने बोला, ऐसा नहीं है। फिर हमने तो समझाया अपने तरीके से, भाई हमारा 5 कर्मेंद्रियों का रथ है, हम आत्मा इसमें विराजमान है और हमको अपने घर में जाना है और बाबा हमको ऐसे अव्यक्त बनने के लिए हमारी पालना कर रहे हैं। जो भी हमको आता था हमने बता दिया उनको। तो फिर नाश्ता किया उन्होंने। फिर नाश्ता करने के बाद बोला, अभी हमको वापस जाना। हमने बोला, ठीक है। तो नाश्ता करने के बाद जैसे यहाँ से आए ना शांति स्तंभ में, तो शांति स्तंभ देखने के बाद जैसे उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई विशाल उनकी सीढ़ियों की तरफ, तो वहाँ उनको बाबा दिखाई दिया ऐसे ऐसे हाथों कर लाइट वाइट लाइट में सूक्ष्म काया में। तो उसमें हमको बताया नहीं। फिर वापस आया तो फिर बाबा के कमरे में के बाद फिर वो वापस गेट पर गया। तो गेट पर गया तो फिर उसको सामने बाबा दिखाई दिया। तो फिर मुझे कहता, उसमें तो हमको बताया नहीं उसने, फिर मुझे कहता एक दिन और रह सकते हैं। तो हमने बोला, चलो ठीक है, रह सकते हैं। तो हमने बोल दिया भाई को उनको रहने के लिए। तो फिर शाम को फिर वापस आया। फिर शाम को उसने बताया, बोला, सचमुच बाबा गया नहीं है, बाबा इधर ही रहता है और उसने हमको ये बताया कि जब तक यज्ञ का काम संपन्न नहीं हुआ तब तक मैं यही रहूँगा। तो ये कौन, किसने अनुभव किया? जो ज्ञान में नहीं है, जिसको ज्ञान ही नहीं है उसको बाबा अनुभव करा रहा है। और उस आत्मा का ही पार्ट था, फिर बाद में तो सहयोगी बन गई है। तो अर्थ कहने का यह है कि बाबा का वायदा है, भगवान का वायदा है कि हमेशा मैं तुम बच्चों के अंग संग हूँ। ये हमारा मनुष्यों का वायदा नहीं है। बाबा ने कहा ना, आत्मा आत्मा का वायदा नहीं निभाती है, लेकिन परमात्म वायदा जो टाले नहीं टल सकता है कुछ भी हो जाए। तो हमेशा हमको महसूस करना है कि हम बाबा की छत्र छाया में पल रहे हैं, बाबा की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, बाबा जैसे हमारी श्वासों में समाया हुआ है, हमारे दिल में बैठा हुआ है। तो ऐसे वरदानों की बरसात हमको निरंतर महसूस करनी है। तो ये था परमात्म वायदा। बाबा ने कहा, वायदे तो करते हैं बच्चे, साथ भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन क्या आता आगे फिर में? बातों के पर्दे आ जाते हैं, बातों के बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं। और जब बातों का चिंतन करते हैं तो बाप किनारे हो जाता है। सही बात है, अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और बीच में हम तीसरा व्यक्ति आता है और मैं उसकी तरफ अपना मुख मोड़ लूँ तो दूसरे वाला तो स्वतः किनारे हो जाएगा ना। सिंपल, कितनी समझने की बात है ये, कितना स्पष्ट तरीके से बाबा छोटी छोटी बातों के माध्यम से हमारी बुद्धि की नसों को खोल देता है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं हम। तो बाप को किनारे तो हम स्वयं करते हैं, वो किनारे नहीं होता है। छोटी छोटी बातों के पर्दों के पीछे हम अपने जीवन को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, अपनी राजधानी को भूल जाते हैं, बाबा के साथ जो संबंध है उनको भूल जाते हैं, और उनको भूल कर हम पास्ट वाली बातों में जीना शुरू कर देते हैं। फलाना ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो ऐसे ढेर सारी बातों का बोझ हमारे मन को बोझिल कर देता है। फिर हम उठ नहीं पाते हैं। फिर उसका होता क्या परिणाम? जिसको हम याद करेंगे उसी की एनर्जी हमारे अंदर आएगी। देदारी को याद करेंगे, देदारी से बातें करें तो देदारी की एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, सीधी सी बात है। अगर हम निराकार को याद कर रहे हैं, अव्यक्त को याद कर रहे हैं, उसके चरित्र को याद कर रहे हैं, उसके समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वैसी एनर्जी हमारे में आ रही है, वैसी आत्मा उसको एग्जॉर्ब कर रही है, वैसी आत्मा उसमें उस उसके द्वारा पोषित हो रही है, पलवित हो रही है। तो योग जो है बड़ा सिंपल है, योग तो हमारा निरंतर लगा ही रहता है। अगर हम किसी ज्ञान के बिंदु का चिंतन भी करें तो जैसे बाबा की शक्ति हमारे अंदर आ रही है। ज्ञान का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका चिंतन करना भी बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराता है। तो ये देखना है सारे दिन में हम बातों में कितना रहते हैं, बाप के साथ कितना रहते हैं। ऐसा नहीं है बातें नहीं करनी है, बातें करनी है, लेकिन जो काम की हों, जो किसी का भला करने की हों, जहाँ किसी का हित समाया हुआ, कल्याण समाया हुआ हो, किसी को रास्ता दिखाने वाली हो, किसी के दुख दूर करने वाली हो। हाँ, कोई हमारे पास अगर समस्या का समाधान करने के लिए आता है और देखता है कि इस व्यक्ति से, इस आत्मा से मुझे अपना समाधान मिल सकता है, तो ज़रूर हमको उससे बात करनी चाहिए। लेकिन स्वयं को उतना पहले परिपूर्ण शक्तिशाली बनाकर पहले से हमें तैयार रहना है, नहीं तो समय पर तैयार नहीं होंगे। पहले से पूरी तैयारी चाहिए। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हमेशा अलर्ट रहो, एवर रेडी रहो, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, इसलिए पहले भी कहा था हमेशा हमको संपूर्णता की सीट पर बैठे रहना, उतना नहीं है उससे। संपूर्णता से उतरते हैं तो कोई भी हमको खींच सकता है, कुर्सी पर बैठ ही रहना है, उतना नहीं है। अर्थात अपने सोमान की सीट पर, कोई ना कोई सोमान का चिंतन, सोमान की चर्चा या सोमान का विस्तार, सुमान का स्वरूप, उसका अनुभव करते ही रहना है। तो बाबा कहते हैं बातों के पर्दों से बाहर निकलो, बातों को छोड़, बाप को याद करो। और क्या कहा बाबा ने, अगर ये पर्दे नहीं हैं तो हम ब्रह्मा बाप के आचरण पर नहीं चल सकते हैं। ब्रह्माचारी, बाप से प्यार है तो क्या बनो, ब्रह्माचारी, अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। आचरण अर्थात कर्म, मुरली में था ना आचरण अर्थात कर्म। हमारे कर्म कौन से हैं, कर्म स्थूल और सूक्ष्म। एक है स्थूल रूप से जो कर्म सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक है सूक्ष्म कर्म। कौन कौन से सूक्ष्म कर्म हैं, हमारा देखना ये सूक्ष्म कर्म है। अब हम एक दो को देख रहे हैं तो हमारी आंखों से कौन सी ऐसी रेस जा रही हैं एक दूसरे को, वो हम स्वयं ही जांच कर सकते हैं। पॉजिटिव जा रही हैं, प्योर जा रही हैं, नेगेटिव जा रही हैं, ये सूक्ष्म कर्म है। और ये सूक्ष्म कर्म बहुत गहरे तल पर मन के ऊपर बैठ सकता है। मान लो मुझे किसी का फेस दिखाई दे रहा है, उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसकी दृष्टि को मैं किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, उसके चेहरे को मैं कौन सी नज़र से देख रहा हूँ, वो एनर्जी हमें प्रभावित कर रही है, ये सूक्ष्म कर्म है। स्थूल सेवा करना बड़ा आसान काम है, लेकिन सूक्ष्म बहुत गहरे तल पर प्रभावित करता है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा किसी को। उसके लिए तो हम खुद ही अपना विश्लेषण कर सकते हैं, अंदर में जांच कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं कि सामने वाले की नज़र, सामने वाले का फेस, सामने वाले की चाल चलन, सामने वाले का पहनावा हमारे ऊपर किस तरीके से, उसका वाइब्रेशन, उसका प्रवाह कैसे हमारे ऊपर। तो ये सूक्ष्म कर्म है, हमारा देखना, हमारा सोचना, ये सूक्ष्म कर्म है। या किसी को हम बोल रहे हैं तो हमारे बोल से वाइब्रेशन कौन से जा रहे हैं। जो बाबा कहते, बच्चे कहते मेरा भाव तो ऐसा नहीं था, अगर भाव ऐसा नहीं था तो सामने वाले को अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। फिर कितना सूक्ष्म फिलॉसफी है, मैं बाहर से भले आपकी महिमा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे से तो कुछ और ही बोल रहा हूँ। तो अगर हमारा भाव अच्छा है, अर्थात पहले से आपके प्रति या दूसरों के प्रति हमारी भावना ही ऐसी है, तभी तो मुख से बोल निकल रहे हैं। ऐसा नहीं तो कि निकल गए हैं, ऐसे थोड़े निकल जाते हैं, अंदर में है तभी तो निकले ना, भावनाएं हमारी ऐसी हैं पहले से। तो हमारे अंदर ना एक बहुत बड़ा संसार है, संकल्पों का, दृष्टि, वृत्ति, भावनाएं, भाव, कृति, बहुत बड़ा संसार है अंदर में। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने भीतर झांको। संसार वाले भी लोग क्या कहते हैं, अपने भीतर देखो, हमने अंदर में कौन कौन से संसार को बसा के रखा हुआ है, और उसकी फिर पालना भी करनी पड़ती है। तो बाबा ने तो हमारा संसार ही सारा बदल दिया, कितना अच्छा संसार बना दिया। देखना, उठना, बोलना, सोचना, करना, व्यवहार में आना, समन संपर्क में आना, मनसा वाचा कर्मणा, सारा ही बदल दिया। बाबा ने कहा ना, अमृत वेले से रात तक तुमको श्रीमत मिली है, आज्ञा मिली है, कौन कौन सी मनसा, कौन से संकल्प करने हैं। कल की मुरली में था ना, वरदान था मनसा, कौन सा संकल्प अमृत वेले करना चाहिए। क्या आज की था, अमृत वेले बच्चे संकल्प तो करते हैं आज की मुरली में कि परमधाम जाना है, लेकिन साथ साथ में देखो निंद्रा वाला सबको याद है अनुभव ऐसे क्योंकि वो हमने अनुभव किया, उसने कभी भूलता नहीं है, वो निंद्रा वाला पहले याद आ जाएगा। हाँ वो भी बाबा ने पिछले 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 संडे को बोला था कि ये योग में नींद अच्छी आती है, सात्विक होती। हाँ जी हाँ, वाइब्रेशन ही ऐसे। तो वास्तव में हमको पहले से तैयारी करनी चाहिए कि हमको योग में कौन से संकल्प करने, पहले से 10-11 संकल्प रखो, है ना। कौन सा संकल्प रखेंगे? अमृत वेले मैं संसार की सबसे ताकतवर आत्मा हूँ। संकल्प चेंज करने हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान ही बड़े सालों से करते आ रहे हैं, उसको चेंज कर दो अभी। इस संसार की मैं सबसे ताकतवर आत्मा हूँ। कौन कौन सी ताकत समाई हुई है उसका विस्तार करो। फिर ऐसे अलग अलग से पहले 11 संकल्प करो। मैं और क्या संकल्प करेंगे आप बताओ, नया संकल्प कोई? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांत स्वरूप करेंगे तो सवेरे नींद आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि जैसे शांत स्वरूप आता तो आंखें बंद। ज्ञान स्वरूप हूँ और मैं ज्ञान की अग्नि हूँ। ऐसे कुछ ताकतवर संकल्प करने चाहिए जहाँ थोड़ा सेक लगे। विश्व कल्याणकारी हूँ, जागती ज्योत हूँ, धधकता हुआ ज्वालामुखी हूँ। ज्योत फिर भी कभी हवा आएगी तो बुझ जाएगी, ज्वालामुखी सबको जला के राख कर देगा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हाँ जी कितने पावरफुल, कितने पावरफुल, सबसे पावरफुल, वेरी गुड। माया जीत आत्मा और आधार मूर्त और नए कुछ नए संकल्प बताओ। हैं परमात्म शक्तियों की मशाल हूँ और एनर्जेटिक आत्मा हूँ। हाँ एकदम नए नए संकल्प बने। मैं सारे संसार की कौन सी आत्मा हूँ? जो सोच रहा था चेंज कर दिया अभी। संसारे संसार की आत्माओं के लिए मैं ऑक्सीजन का काम करती हूँ। मेरा संकल्प हर आत्मा के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है। अगर मैंने अपने संकल्पों में नेगेटिव एनर्जी भरी तो दूसरे संकल्पों दूसरे आत्माओं में भी नेगेटिव एनर्जी जाएगी। तो ऐसे नए संकल्प करने हैं, तो ऐसे 15-20 संकल्प और फिर उसको रिवाइज करना। हाँ जी बाबा के ज्ञान का पोस्ट मैन हूँ, घर घर में पोस्ट कर रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। फरिश्ता बनाऊँ, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनी है, एक थैला टंगा हुआ है, टोपी ऊपर लगाई है और हर घर के आगे जाके पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल रहा हूँ। तो देखो कितना अच्छा संकल्प है। रूहानी सेवक हूँ, यज्ञ रक्षक हूँ। तो नए नए संकल्प करने हैं, है ना। और संकल्प उसका योग करना है, जैसे मैं आत्मा यहाँ से कूद कर समुद्र में समा गई हूँ, ज्ञान सागर मेरे सामने है और मैंने यहाँ से छलांग मारी और सीधा समा गई, या ज्ञान का सागर इधर ही समा गया। तो नए नए संकल्प करने हैं तो नींद नहीं आएगी। तो नहीं तो नींद का प्रकोप, नींद तो अपनी जगह बना ही लेती है। तो हमको नए नए संकल्प रचने हैं। तो कहाँ थे? बातों के पर्दों से निकलकर नए नए संकल्पों की रचना रचनी है। हाँ जी हाँ, फिर नींद आती नहीं है, यहाँ नींद आ जाती है। तो वो वातावरण हमको निर्माण करना है। बाबा कहते हैं तुम विश्व निर्माता हो, तो माया की ऐसी तैसी है ना। हाँ ठीक है, तो माया कौन सी है? माया तुम्हारी बहन है, है ना फिर। हाँ तो बहन इसलिए हमारी प्रकृति के लिए हमको वो जागृत रखती है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे थोड़ा सा भी गलती करते तो माया बेटे को मैं भेजता हूँ। तो हर एक चीज़ में कल्याण समाया हुआ है। अच्छा तो अगला क्या था? बातों के पर्दों से हमको बाहर निकला है। ब्रह्मा बाप के आचरण और उच्चारण, उच्चारण अर्थात बोल। जो भी हमारे मुख से बोल निकलता है वो कितना सुखदायी है, कितना उमंग उत्साह वाला है, कितना शक्तिशाली है, कितना दूसरे के दुख दर्द हरने वाला है। बोल हमारे बहुत मायने रखते हैं। कहा जाता है मनुष्य 3 बातों से पहचाना जाता है। कौन कौन सी? पहले भी बताया था, जगदीश भाई की क्लास है, जगदीश भाई जी की क्लास है, गुफ्तार, रफ्तार और दस्तार। गुफ्तार अर्थात गुफ्तगु, बातचीत, ये उर्दू के शब्द है। रफ्तार अर्थात चाल चलन, दस्तार अर्थात पहनावा। तो गुफ्तार, रफ्तार और दस्तार जगदीश भाई जी की क्लासेज हैं। इतनी पावरफुल क्लासेज हैं कि उसमें जैसे आग समाई है, एकदम जिंदा भी मुर्दा हो जाएगा एकदम। इतनी ज़बरदस्त पावरफुल दादियों की क्लासेज हैं, पुरानी पुरानी क्लासेज, तो हमको सुनते रहना चाहिए, क्योंकि उन क्लासों में मिक्स चैरिटी कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभूति है, क्योंकि उस दौर से गुजरी हुई आत्माएं हैं जिसमें संसार में ये ज्ञान का ग भी पता नहीं था लोगों को। उस विरोध के माहौल में आत्माएं जो निकलती हैं वो बहुत शक्तिशाली होती हैं। जब सबको विरोध करते हैं और हमको उस रास्ते पर चलना है तो कितनी ताकत आती है अपने अंदर, और सबको अनुभव होगा जैसे ज्ञान में चले घर वालों ने विरोध किया तो कितनी शक्ति आ गई थी सब में, है ना? तो अभी भी शक्ति कायम है ना, वो अभी तो बाबा कहते हैं जितने साल हैं उससे ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। तो क्या करेंगे, आचरण और उच्चारण सारे दिन में देखना है कि हमारी चाल चलन बाबा समान है, बाबा समान, हमारा बोल मीठा है, हमारी दृष्टि मीठी है, हमारे कर्म मीठे हैं, हमारा स्वभाव मीठा है, हमारे संस्कार मीठे हैं, हमारी चाल चलन मीठी है, हमको सब मीठे लगते हैं या फिर नीम की तरह लगते हैं, नीम भी मीठा होता है ना? तो हमको ये देखना आचरण और उच्चारण कैसा है। बाबा कहते हैं आज्ञा तो सवेरे से लेकर रात्रि तक हर कर्म की मिली है, अमृत वेले कौन से संकल्प करने वो चर्चा की, अमृत वेले के बाद क्या होता है फिर मुरली, तुरंत मुरली नहीं, जैसे अमृत वेला पूरा तो रजाई भी खींचती है उधर से पुकारती है ना? तो अमृत वेले के बाद सोना नहीं है, एक्सरसाइज करनी है या फिर कुछ रचनात्मक कार्य करो, घर की सफाई करो, और उसमें सवेरे का जो टाइम होता है तो बहुत अच्छा एक दूसरे का सहयोग करना है। घर में अगर रहते हैं पति पत्नी हैं तो पति पत्नी के कार्य में हाथ बटाए, है ना, और पत्नी पति के कार्य में हाथ बटाए, तो हमारे संस्कारों की रास होगी, नहीं तो दूरियां बढ़ती जाती हैं। अगर कोई दूसरा साथी हमारा ज्ञान में नहीं चलता है तो सहयोग करना उसका जरूरी है, नहीं तो हम सोचते हैं हमको ज्ञान ही नहीं, इसको ज्ञान ही नहीं है, ऐसे सोचते रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी हम फैलाते रहते हैं। तो हमको सबका सहयोगी बनना है। हमने देखा कईयों को इतना सहयोगी बनते हैं, एक दो का सहयोग करते बारी बारी टर्न बाई टर्न मधु बनाते हैं, है ना? हमारे वो भाई जी पीछे बैठे हैं गुजरात से, तो टर्न बाई टर्न ऐसे सबको सहयोग देना है, क्योंकि हम सबके पालन करता है बाबा ने बताया ना आज, कारण का निवारण करना है, नहीं तो कारण सवेरे से लेकर रात्रि तक कारण 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 उसमें फाइल बन जाती है और फिर फाइन बनना पड़ता है, तो फाइलें तो बहुत सारी इकट्ठी की हैं। तो कारण को निवारण करने के लिए हमको स्वयं को रिफाइन करना है। क्या रिफाइन करेंगे? अपने स्वयं को, ज्ञान को रिफाइन करना है, अर्थात ज्ञान से बुद्धि को रिफाइन करना है। हाँ जी, एक सेकंड में करना है, वो भी सही बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का, एक सेकंड में करने का है। तो ज्ञान से स्वयं का शुद्धिकरण करना है, रिफाइन करना है, अपनी दृष्टि को, वृत्ति को, बोल को, संबंध संपर्क को जांच करनी है। थोड़ा सा भी हमको टाइम मिले तो बाबा ने आज बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया और उसका हमने थोड़ा बहुत अभ्यास भी किया। बाबा ने कहा दरवाजे हमेशा मिलन के लिए खुले हैं, कितनी अच्छी बात है। यहाँ तो बोलना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है, आगे चलो, पीछे चलो, दाएं चलो, बाएं चलो, यहाँ सीट नहीं, बाहर बैठो, फलाना करो, लेकिन वहाँ तो दरवाजा ही नहीं है। मिलन के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो सभी अभी एक मिनट के लिए सूक्ष्म वतन में पहुँच जाओ और महसूस करो जैसे बाबा दरवाजे पर खड़े हैं। वो चित्र देखो, वहाँ खड़ा ना एक चित्र, सामने वाला, ऐसे बाबा पुकार रहे हैं, और सभी वहाँ पहुँच जाओ और महसूस करो जैसे बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आओ मेरे लाडले बच्चे, मेरे मुरब्बी बच्चे, शक्तिशाली बच्चे, स्किलदे बच्चे, लवली बच्चे, और बाबा मुझे सर्व शक्तियों से जैसे वरदानी आज से चार्ज कर रहे हैं, मैं आत्मा बहुत ताकतवर बनती जा रही हूँ। बाबा की आंखों से शक्तिशाली रंग बिरंगी असंख्य किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं, मेरी आँखों में समाती जा रही हैं, ये आँखें फरिश्ता आँखें बन गई हैं, आत्मिक दृष्टि से परिपूर्ण हो गई हैं, प्योर आँखें बन गई हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर और मैं संपूर्ण रूप से अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ, अव्यक्त फरिश्ता हूँ, पूरी महसूसता मैं अनुभव कर रहा हूँ। जैसे देह की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल उससे मुक्त हो चुका हूँ, ये स्थूल देह भी जैसे सूक्ष्म देह में परिवर्तन हो गई है, फिर वापस अपने शरीर में। तो ऐसे सारे दिन में प्रैक्टिस करनी है, एक एक सेकंड, दो दो सेकंड, दस दस सेकंड, लंबा टारगेट नहीं। लंबे टारगेट में फिर भूलने की, भटकने की संभावना हो सकती है, लेकिन छोटे छोटे हम गोल जब करते हैं तो चार्ज भी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो कितना अच्छा अभ्यास था कि बाबा ने बच्चों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले रखे हैं, कोई ताला चाब भी नहीं है, लेकिन हम बातों के पर्दों के पीछे चले जाते हैं तो ऊपर पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने अपने मन को बांध के रखा हुआ है, या तो अपने देह के संस्कारों में, देह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारा दिन वही चिंतन करते रहते हैं। बाबा कहते हैं पालना तो है, लेकिन इतना इस देह के पीछे नहीं पड़ जाओ कि हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाए। देह के संबंधों को याद कर रहे हैं, जिनको भूलना है उनको अगर बार बार याद करते हैं, हाँ याद तो करना है आवश्यकता अनुसार। बाबा ने कहा प्यार सबसे करो, लेकिन कैसे, ऊपर ऊपर से, अंदर से मेरे से प्यार करो, है ना। अगर हम अंदर से प्यार करते हैं तो बाबा को जलसी हो जाती है कि मुझे छोड़ के इनको प्यार में लगे हुए, तो हमको बाबा से प्यार करने का तरीका सीखना है, बाबा के मन को पढ़ना है कि बाबा हमारे से चाहता क्या है, और बाबा का मन कैसे पिघल सकता है वो हमको देखना है। कैसे पिघलेगा, जो बाबा कहते हैं आज्ञाकारी बनो, जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर वन आज्ञाकारी बने, किसमें, त्याग में, एक धक से सारा त्याग कर दिया। अब बाबा कहते तुम बच्चे भले घर गृहस्थ में रहते हो, सब जिम्मेवारियां तो संभालनी है, अब सारा कुछ दे नहीं सकते, लेकिन ट्रस्टीपन पूरा होना चाहिए, रखो भले अपने पास ही है, लेकिन उसमें हमारी रग नहीं जानी चाहिए, उस चीज़ को बार बार हमारे संकल्प नहीं चलने चाहिए उसके प्रति। जो भक्ति में कहते हैं तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, तो प्रैक्टिकल में अनुभव करना है, जो भी हमारे पास में घर में संपत्ति है, स्थूल सूक्ष्म जो भी है, वो किसकी दी हुई है, बाबा की दी हुई है। घर में फैमिली किसकी है, वो बाबा की फैमिली है। बच्चे किसके हैं, बाबा के हैं। पत्नी किसकी है, बाबा की। पति किसका है, तो अभी तो आप रुक गए सारे तो सब बाबा के हैं ना, सब बाबा के हैं। वैसे तो बाबा ने बोला जिस मर्जी संबंध से मेरे साथ जोड़ो, किसी ना किसी तरीके से हमारा लिंक जुड़ा रहना चाहिए, है ना। तो बाबा का दिल कैसे लेना है वो हमको खुद ही देखना है ना। जैसे किसी के मन की कमजोरी का हमको पता चल जाता है कि इसको अगर किस तरीके से खुश करना है, ये चीज़ देंगे तो खुश हो जाएगा ना। तो बाबा के मन को भी पढ़ने की, उसको रीड करने की हमको थोड़ा प्रयास करते रहना चाहिए, और वो है मुरली। मुरली से हमारा जितना प्यार होगा तो बाबा का प्यार अपने आप ही बरसता रहेगा, प्यार करना नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अभी बाबा के साथ जो ब्रह्मा बाप का आचरण है, उच्चारण है, वो ऐसा होना चाहिए, और बार बार जो मिलन के दरवाजे खुले हैं तो बार बार हमको ऊपर का अनुभव करना है, और जो भी हमारे जीवन में कारण आते हैं उनका निवारण करना है। बाबा कहते हैं यहाँ अगर हम खुद का निवारण नहीं कर सके या दूसरे का निवारण नहीं कर सके तो राज्य का निवारण कैसे करेंगे। सतयुग में तो निवारण की बात ही नहीं है, बाँ तो खुश खरापति पूछने की बाँ वैसे वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कारण और निवारण कहाँ करेंगे। जब द्वापर युग में चालू होगा तब जो राजा हैं वही बन सकते जो जनता के कारणों का निवारण करेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे। मिनिस्टर कौन सब कौन बनते हैं, जो हर कारण का निवारण करना जानता हो। तो उसी तरह हम सभी कौन हैं, महाराजाएँ हैं, महारानियाँ हैं, तो कारण का निवारण करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अपने जीवन के कारणों के भंवर जाल में अपने जीवन को हम ऐसे कराते, नहीं तो दूसरों के लिए हम मिसाल कब बनेंगे। हमारा जीवन संसार के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। कहते हैं ना जो स्वयं के लिए जिया तो क्या जिया, जो जीना तो सबके लिए जियो, संसार के लिए। हमारे जीवन अपने लिए नहीं है, संसार के लिए है, है ना। दो चार दिन पहले एक जज आए थे, जज बहन थी वो, और बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं। बोला अभी जो पुरुषार्थ, वास्तव में पुरुषार्थ हमारा हो चुका है, अभी तो हम देवता के स्वरूप में रहें, हम दातापन हैं। अब हम जब सोचते हैं कि हम संगम पर हैं तो संगम में रहते रहते कहीं ना कहीं कलयुग के संसार भी, संस्कार भी मिक्स हो जाते हैं। हमेशा ये सोचो कि हम अभी सतयुग में हैं, और दादियाँ भी कई बार ऐसे कहती थी, है ना। तो बहुत संस्कार हमारे भी इमर्ज होंगे, नहीं तो अगर सोचेंगे हम संगम पर बैठे हैं तो कब तक बैठेंगे संगम पर, आखिर चलना भी तो है आगे, यात्रा भी तो बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। नहीं तो संगम पर बैठे बैठे कभी वो संस्कार इमर्ज होंगे, कभी वो संस्कार इमर्ज होंगे, कभी वो होंगे कभी वो होंगे। तो अभी हम कहाँ पर हैं? सतयुग में। तुम्हारे नाम कौन कौन से? अभी नाम क्या है हमारे? सुंदर सुंदर से लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी। और कलयुग की लक्ष्मी कैसी होती है? अजी सुनते हो ऐसे लक्ष्मी बोलती है तो ऐसे होते हैं, तो बात तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना, बात जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी। हाँ जी, हाँ। तो हमको वो देवता इस रूप का अब भी अनुभव करना है। हम सभी कौन हैं? देवता हैं। कौन कौन से देवियाँ हैं? दुर्गा देवी, लेकिन ये सतयुग का नाम नहीं होगा, सरस्वती नाम होगा। दुर्गा देवी और भाई का नाम दुर्गा प्रसाद, और आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो घर में तो कैसा लगेगा फिर? शीतला देवी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु। तो हम देह, हाँ, जब कोई बोलते हैं तो, और आगे पीछे ज्वाला देवी। अरे हाँ, कल्याण के लिए थोड़ा रोल दिखाना पड़ता है जी। हाँ ठीक है, हाँ, दूसरों को समझाते समझाते खुद को भी हम समझाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ये जीवन कौन सा है? देवताई अभी का जीवन है। अच्छा, और क्या कहा बाबा ने मुरली में? हाँ, दुआएं जीवन में देखना है, दुआएं जमा करने के स्रोत कौन कौन से हैं। एक तो बाबा ने बोला आज्ञाओं का पालन करके दुआएं मिलेगी, अब चिंतन अपना ये करना और कहाँ कहाँ से दुआएं मिलेगी हमको। सर्व का सहयोग करने से दुआएं मिलती हैं, और सेवा करने से दुआएं मिलती हैं, हाँ जी, निष्काम भाव से सेवा करने से दुआएं मिल, श्रीमत से सेवा करेंगे तो सेवा मिलेगी, और दुआएं मिलती हैं अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं। जो हमारी दिनचर्या जैसे सवेरे से शाम तक हम किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं, अगर आप योग में टाइम से आ रहे हैं, योग के बाद अमृत वेला होते, अमृत वाला होने के बाद अगर आप बोलते नहीं हैं तो जैसे दुआएं जमा हो रही हैं, नहीं तो अमृत वेले के बाद ही बातें चालू हो जाती हैं और वो दुआएं कट जाती हैं, क्योंकि जो हमको बातें करते देख लेता है उसके मन के जो संकल्प निकलते हैं वो हमारी कमाई को चट कर देते हैं, क्योंकि अमृत वेला करके जो आत्मा अवतरित होती है उसके संकल्प उसी में फलीभूत होते हैं। इसलिए हम सबको अटेंशन रखना है कि अनावश्यक रूप से कहीं नहीं बोला, अगर जरूरी काम है बहुत तो साइड में जाके, नहीं तो हमने देखा बाबा के कमरे से बाहर भी बात, वहाँ भी मोबाइल बज रहा है, अनायास कभी बजाता ठीक है, लेकिन फिर भी हमको अपना निरीक्षण करना है, क्योंकि हम कमाई तो बहुत करते हैं, लीकेज जो होती है उसके ऊपर हमारी नज़र नहीं रहती, और ये जो छोटी छोटी लीकेज है सारी की कमाई को चट कर देती है। फिर बाद में हम सोचते हैं हमने तो अमृत वेला भी किया, मुरली भी सुनी, फिर क्या हो रहा है? तो जो सूक्ष्म छोटी छोटी आदतें हैं ना, ये हमारी कमाई को खा के चली जाती हैं, दिमाग की तरह चट कर देती हैं, और उसका परिणाम जीवन में फिर उदासी रहेगी। इतना ज्ञान है वो करने के बाद उदासी क्यों रहती है? क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको दूसरे देख रहे हैं उनके जो संकल्प हैं, क्योंकि उनके संकल्प में बहुत एनर्जी है, ताकत है, तो हमको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, उन्नति भी नहीं होती है, बिल्कुल एकदम एक रस रहेंगे, एक बैंक वहीं खड़ा रहेंगे, अचल अडोल ऐसे। बिल्कुल प्रैक्टिकल में हमको तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे पुरुषार्थ में पंख लगा देती हैं। ऐसा नहीं बड़ी बड़ी बातें करनी तो बड़ा बनेंगे, नहीं, छोटी छोटी बातें हमको आगे बढ़ाती हैं। हाँ बिल्कुल, जितना हो सके मधुबन में तो और क्या है, यहाँ मौन में रह सकते हैं ना, जिसकी जरूरत है काम की भले करो, लेकिन ऐसे स्थान पर करें जहाँ दूसरे डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, कमरे में माताएं रहती हैं, कल ही हमको कोई भाई माता ही बोल रही थी कि दो माताएं 10 बजे के बाद भी बातें करते थे जोर जोर से, तो फिर कैसे कमाई होगी उनकी? मधुबन में आके भी फिर ऐसे करेंगे तो जो भी कमरे में जो क्लास में नहीं आई हैं माताएं, सेवाधारी माताएं कोई भी हैं, ये बहुत अटेंशन रखना, नहीं तो हमारे पाप बस हम नहीं होंगे, और ही पुण्य का खाता जमा करने के बजाय पाप का खाता हमारे पिस में रह जाएगा। हम आए कौन सी भूमि पर हैं? जिस भूमि पर त्याग तपस्या स्वयं आदि पिता ने दादियों ने की है, अपना पूरा तन मन धन पूरा जीवन लगा दिया इधर, तो उस वातावरण को बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है। केवल चुप रहना ही कितनी सेवा होती है, तो दुआएं जमा करने के बहुत स्कोप हैं। बाबा कहते हैं सवेरे से लेकर रात तक केवल आप दुआएं जमा करो, कुछ करो ही नहीं, तो हमको देखना दुआएं जमा करने के कौन कौन से स्रोत हैं। जरूरी नहीं हमको स्थूल में किसी का हेल्प करें तो ही दुआएं मिले, सूक्ष्म रूप से दुआएं भी बहुत शक्तिशाली होती हैं, शुभ भावना शुभकामना होती है, तो दुआएं जमा करनी है और ऐसे बोल निकले जो सब हमारे बोल से खुश हो जाएं, डबल लाइट हो जाए, हल्के हो जाए, भारी ना हो कोई, महावाक्य बन जाएं और संतुष्ट रहें, स्वयं से संतुष्ट और सबसे संतुष्ट। मियाँ मिठूनी कि हाँ मैं तो संतुष्ट हूँ, मेरे से सब संतुष्ट, ऐसा नहीं है, संतुष्टता बहुत बड़ी बात है। स्वयं परिवार को संतुष्ट करना, बाबा कहते हैं माला में आने वाले हो ना तो माला कैसे बनेगी, सबके साथ रहना किनारा ही नहीं करने का है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं सभी, अगर हम अपनी सूक्ष्म रूप से जांच करते रहेंगे और इसमें बाबा की मदद मिलती है, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ता है ज्ञान योग में, थोड़ा बिजी रहने का। जितना समय मधुबन में आए अपने आप को इतना फुल चार्ज करो, इतना फुल चार्ज कर लो कि कितना वहाँ जाके भी औरों को चार्ज कर दो, एकदम आपको देख के झटका लग जाएगी, जिसको करंट लग जाए एकदम, इतना करंट भर लेना है। हाँ, मधुबन में बादल भर के जाओ और वहाँ बरसो जाके, और यहाँ बैठे बैठे भी अपना, अगर घर, पहले भी हमने बताया घर याद आता है तो टेंशन नहीं लेने की उसकी, यहाँ बैठे बैठे घर को मधुबन के वाइब्रेशन से भर देना है, उस समाज को, उस गली मोहल्ले को, शहर को, बाजार को, देश को, प्रदेश को, विश्व को, प्रकृति को, सबको चार्ज करते रहना है, क्योंकि हम चार्जिंग पॉइंट हैं एकदम, मुख्य संसार के सबसे शक्तिशाली सुप्रीम सोल से हमारा कनेक्शन है और आत्माओं का नहीं है। तो हमारा जो करंट है एकदम कैसा होना चाहिए, ज्वालामुखी तरह एकदम दिखाई देना चाहिए, लाल लाल। ओम शांति।